बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से।
जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा।
उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल।
बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चले अपने प्रयास से।
कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे।
आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज, नेत्र खोल आज, रास्ता चुन आज।
बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चले अपने प्रयास से।
मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से, बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख, सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना।
बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चले अपने प्रयास से।
बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना।
प्रसिद्ध कथा है, एक किसान बाजार से एक बकरी खरीदता है और अपने कंधों पर लिए लौट रहा होता है। पांच ठग उसे देखते हैं और उनके मन में लालच जगता है, पर किसान बलवान है और बकरी उसके हाथ में है। वो चार ठग, पांच ठग थोड़े कमजोर हैं, पर उन्हें वो बकरी चाहिए। वो योजना बनाते हैं। पहला ठग उस किसान से मिलता है और कहता है, नमस्ते, सुप्रभात। वो किसान कहता है, सुप्रभात। वो ठग कहता है, अरे वाह, ये कुत्ता तो बहुत बढ़िया है, कहां से खरीदा? वो किसान कहता है, कुत्ता, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं, ये बकरी है। वो ठग कहता है, कमाल है, और चला जाता है। वो किसान हंसता है, कैसे मूर्ख लोग हैं दुनिया में, बकरी को कुत्ता कहते हैं, फिर भी वो अपने हाथ से उस बकरी के पैरों को सहलाता है। संशय का बीज डल गया है। थोड़ी देर के बाद दूसरा ठग मिलता है, कहता है कमाल का कुत्ता दिख रहा है, ये तो कहां से खरीदा, किस नस्ल का है ये? कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है इस बार किसान का, कहता है कुत्ता कुत्ता कहां दिख रहा है तुम्हें, ये बकरी है, बकरी तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो ठग कहता है कमाल है, इतना बढ़िया कुत्ता है और इसे बकरी कहते हो, शायद तुमको दुकानदार ने ठगा है, मुझे क्या। वो किसान उस बकरी को नीचे उतार के देखता है ठीक से, वो बकरी ही है, फिर से कंधे पर रखता है। तीसरा ठग मिलता है, कहता है ऐसा कुत्ता मैंने आज तक नहीं देखा, क्या तुम बता पाओगे ये किस दुकान से खरीदा है, मुझे भी खरीदना है। वो किसान कहता है हाँ मैंने दुकान से खरीदा है, अंदर है दुकान, बाजार में। आगे बढ़ता है, मन में अब संशय है। चौथा ठग मिलता है, वो कहता है कोई कुत्ते को सिर पर लेकर चलता है क्या ऐसे, आगे मत जाना तो गांव के लोग हंसेंगे तुम पर। वो किसान उस बकरी को नीचे उतारता है और साथ साथ चलता है। पांचवा ठग आता है, कहता है कमाल है, दुनिया में क्या चल रहा है, अब ये मत कहना कि ये बकरी है। क्या तुम ये कुत्ता बेचोगे? वो किसान कंफ्यूज्ड उस बकरी को वहीं छोड़ के भाग जाता है। उन ठगों ने उस बकरी को ना चुराया, ना जबरदस्ती लिया, और ना ही उस किसान ने उस बकरी को बेचा और उस बकरी को भी छोड़ दिया। वो किसान शायद एक ब्राह्मण आत्मा ही है और वो बकरी उसका ज्ञान, उसका निश्चय। और वो पांचों ठग पुरानी मान्यताएं, पुराना स्वभाव, पुरानी संस्कार, पुराना संघ, पुरानी स्मृतियां, जो ये कहती है कि जिसको तुम पकड़े हो वो नहीं है जो तुम मानते हो, वो तो कुछ और है, जिसे तुमने श्रीमत समझा है, जिसे तुमने ज्ञान समझा है, जिसे तुमने मर्यादा समझा है, और जिसे तुमने जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य या खुशी या प्राप्ति समझा है वो है ही नहीं, वो तो कुछ और है। और कहने वाला कौन है? हमारी ही अपनी मान्यता है, हमारा ही अपनातीत, हमारा ही पुराना स्वभाव संस्कार। प्रश्न इसका नहीं है कि हम प्रामाणिक है या नहीं, ऑनेस्ट है या नहीं पुरुषार्थ में। प्रश्न है हमारे भीतर जो पुराना छिपा है वो। कोई एक भक्त भीतर छिपा है जो अब तक भी भक्त जैसा ही व्यवहार करना चाहता है। दैट नारद कॉन्शियसनेस, वो भक्त कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं हमें वो नहीं करने देता जो एक योगी को एक तपस्वी को करना चाहिए। और इसलिए वही पुराने संस्कार हमें खींचते हैं, हमें पकड़ते हैं और नारायण कॉन्शियसनेस नीचे गिराते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साकार में मुरली में महावाक्य कभी थे, ज्ञानियों के शिविर में भक्त छिपे बैठे हैं। एक तो वो भक्ति थी जो पहले करते थे और एक तो अब की भक्ति है जो ज्ञान में आने के बाद, इस ज्ञान को समझने के बाद गुप्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इनकॉग्निटो भक्ति चालू है। और उसका स्वरूप क्या है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सब इस निसर्ग रम्य परिसर में आए हैं बात कर स्वयं से, स्वयं को देखने, स्वयं से बातें करने। एक मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और अपने हाथ को यहां रखेंगे और स्वयं से पूछो कि जिस दुनिया से आप आए हैं, जिस स्थान से आप आए हैं, जो दिनचर्या आपकी है, वो सेंटर, वो घर, वो ऑफिस, उसमें स्वयं के लिए कितना टाइम आप निकालते हैं? मेरी दिनचर्या में स्वयं के लिए कितना समय है? ओम शांति। तो जब तक यहां है तब तक एकांत का अनुभव करना है। एकांत के दो अर्थ है, एक स्थूल एकांत, वास्तव में एकांत, बातचीत बंद। अगर करनी हो तो केवल साधना संबंधित, बिना मौन के भट्टिया अपूर्ण है। एक सूक्ष्म मौन, एक के अंत में अंत हो जाना, खो जाना, दोनों ही एकांत का सेवन करना है और जितना हो सके स्वयं से बातें करनी है। यहां से वहां जाकर क्या करना है उसकी एक सूक्ष्म प्लानिंग, यहां से कुछ ले जाना है एक ठोस ब्लूप्रिंट, एक ठोस प्लानिंग। हो सकता है बार बार यहां आने का मौका ना मिले, ना समय का भरोसा है, ना इस शरीर का। जीवन अनित्य है, अभी अभी है, अभी अभी गया। समय बहुत समीप है, संगम युग के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। भगवान की 100 वर्ष की शिक्षाओं का निचोड़ है संपूर्ण पवित्रता। अगर इस पेपर में फेल तो फिर सतयुग में नहीं आएंगे, त्रेता में आएंगे। लोग हमेशा प्रश्न पूछते हैं, ये जो 21 जन्म है ये कौन से है? आप सब उत्तर देते होंगे और जानते भी हैं। इसके 2 उत्तर हैं। पहला 8 सतयुग, 12 त्रेता और संगम का 1। परंतु यदि संगम का वो 1 जन्म दुख में बीत रहा है, भय में बीत रहा है, बेचैनी में बीत रहा है, विकारों में बीत रहा है, डिस्टर्बेंस में बीत रहा है, तो ऐसी आत्माएं जो पहले जन्म से आने वाली है, आएगी पहले जन्म पर, वर्षा उनका है 20 जन्म का। क्योंकि संगम युग का जिनका जन्म फिर खुशियों में बीत रहा है, अतिंद्रिय सुख में बीत रहा है, आनंद में मजे में बीत रहा है, उनके 21 जन्म है। तो हो सकता है किसी के 25.5 जन्म भी है, और किसी के 25 जन्म, और किसी के 25 जन्म। अगर यहां पर ही निरंतर बेचैनी में है और दुख में है और अशांति में है, तो संगम युग का जो जन्म है वो हीरे तुल्य जन्म है। अगर वो हीरे तुल्य अनुभव नहीं हो रहा है तो वर्षा आएंगे जो प्रथम, उनकी हम बात कर रहे हैं, जो लेट आएंगे उनकी नहीं, जो प्रथम आने वाले हैं उधर शुरुआत में, उनका वर्षा कितना हुआ? 20 जन्मों का केवल, या 25.5 जन्म। आधा सुख आधा दुख, सुबह से लेके दोपहर तक ठीक रहता है, दोपहर में डिस्टर्बेंस चालू होता है, शाम तक ठीक रहता है, रात तक ठीक रहता है, रात में विकारों की एंट्री होती है, और विकार अकेले नहीं आते, माया अपनी टीम के साथ आती है। दूसरा 21 जन्म सतयुग में, 8 जन्म, उम्र 150 वर्ष, 8 × 150 कितना हुआ? 1200। त्रेता में 100 वर्ष, 100 × 12 कितना हुआ? 1200। युग कितने का है? 1250 और 1250, तो 50 और 50, 100, वो एक एक्स्ट्रा 21वां जन्म। ऐसा चिंतन है, बाबा ने नहीं कहा है, हमने जो सुना है कईयों के चिंतन से, मनमत। परंतु हम बात कर रहे थे, यहां आए हो तो यहां से कुछ ले जाना है, कुछ ठोस, कुछ पुख्ता। इसलिए भट्टी में बैठते हो तो डायरी और पेन पेंसिल कंपलसरी है। हो सकता है सुनते सुनते कुछ ऐसी पॉइंट टच हो जाए जिसका उत्तर हम पिछले 10 साल से ढूंढ रहे हैं, और हमारे पेन से वो अपने आप लिखा जाए। आवश्यकता नहीं है कि वक्ता ने वो कहा है, तीनों ही चीजें साथ साथ होती रहे। सुनते रहना, लिखते रहना, लिखते लिखते सुनना, और सुनते सुनते लिखना, और लिखते लिखते योग करना, और सुनते सुनते योग करना। चाहे मुरली चाहे क्लास, ताकि बुद्धि यहां वहां न भटके। इसलिए हर एक के पास डायरी कंपलसरी है, और अभी नहीं है तो बाजू वाले से पेन पेंसिल ले लो, पेज ले लो, या मोबाइल अगर है तो उसी में कुछ पॉइंट्स। हो सकता है कि ऐसे दिव्य वातावरण में बैठकर अचानक कोई पॉइंट, कोई टचिंग आ जाए, वक्ता ने तो वह कहा भी नहीं, पर वो सुनते सुनते दो वाक्यों के बीच जो अंतराल है, जो पॉज है, वास्तविक भाषण तो वही है। द पॉजेस आर द बेस्ट क्लास, इसलिए लिखने की आदत रखनी है, सुवर्ण अक्षरों में लिखना है, स्वच्छ अक्षरों में लिखना है, सुलेख लिखना है, एक एक शब्द साइज शिरोधा रेखा सेम सुंदर, क्योंकि ये डायरी में जो लिखा डेट टाइम स्थान, 6 मास के बाद यहाँ से जाकर जब अचानक वो पढ़ोगे तो यहाँ का वाइब्रेशंस, यहाँ की चेतना उसमें समाई हुई होगी, वो पढ़ते ही वापस यहाँ आ जाओगे, क्योंकि संसार हलचल में है, सत्ताओं में हलचल है, चारों तरफ आंदोलन ही आंदोलन है, एजिटेशंस, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, प्रकृति की सत्ता, राज सत्ता, लौकिक ज्ञान की सत्ता, पांचों सत्ताएं हलचल में है, तो ये काम आएगा। इसलिए मौन एकांत प्लानिंग फ्यूचर की, यहां से जाने से पहले वहां क्या करना है, अमृत वेले का, मुरली का, संबंधों का, सेवा का, घर का, लौकिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, जो डिस्टर्बेंस उधर है उस डिस्टर्बेंस को यहां पर साक्षी होकर देखना है, या फिर क्या नवीनता की जा सकती है, या फिर और क्या है जो मैंने अब तक नहीं किया और जो करना बाकी है, कौन सी सेवा, कौन सा पुरुषार्थ, उसका चिंतन। तो भट्टी है चिंतन की भट्टी है, मौन की भट्टी है, एकांत की भट्टी है, स्व स्मरण की, सेल्फ रिमेम्बरिंग भट्टी है, प्लानिंग की भट्टी है, डिजिटल डिटॉक्स की, जितना हो सके हर भट्टी में मोबाइल का स्पर्श ना हो तो बहुत अच्छा, टच ही ना हो, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, एक गुफा में घुस जाना है 3 दिन के लिए, हो सकता है तब भीतर कुछ टचिंग हो। हम अभी एक स्थान पर गए थे, वहां पर बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स थे, 3 दिन की भट्टी थी, तीनों दिन मोबाइल डिपॉजिट हो गया था। जब भट्टी पूरी हुई तो उन भाइयों और बहनों ने कहा हमें इच्छा ही नहीं है वापस लेने की, पता नहीं इन 3 दिनों में हम किस दुनिया में थे, स्वयं से जुड़ गए थे, स्वचेतना से जुड़ गए थे, तो आज हम चर्चा करेंगे, आए थे क्या बनने, नारायण, और बन गए नारद। नारद कभी कृष्ण से पूछते हैं भक्ति मार्ग में, ये माया क्या है, ये संसार को माया क्यों कहते हैं, कृष्ण उससे कहते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी लेके आना। वो जाते हैं पानी लेने, बाजू में ही एक गांव है, दस्तक देते हैं, एक स्त्री दरवाजा खोलती है, नारद को आकर्षण हो जाता है, पिता आते हैं स्त्री के, कहता है मुझे विवाह करना है आपकी कन्या से, पिता मान जाते हैं, शादी हो जाती है, सुखी परिवार आगे बढ़ता है, बच्चे हो जाते हैं, फिर नौकरी भी करने लगता है नारद, वैसे तो ही इज अ जर्नलिस्ट, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, बच्चे हो जाते हैं, सुखी परिवार, सब कुछ विस्तार हो जाता है, और अचानक एक दिन बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ में घर बहने लगता है, किसको बचाऊं, पत्नी एक तरफ बच्चे एक तरफ, खुद को बचाऊं पत्नी को बचाऊं बच्चों को बताऊं बचाऊं, किसी को नहीं बचा पाता। पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, घर भी चला गया, गांव पूरा डूब गया, वो जमीन पर गिरता है। कृष्ण उसे जगाते हैं, क्या हुआ पानी का? वो कहता है कौन सा पानी, मेरा तो संसार उजड़ गया। कहते हैं अरे तुम पानी लाने गए थे ना, तो कौन सा पानी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, कितना समय बीत गया। कृष्ण कहते हैं बस 5-10 मिनट ही हुए हैं। तो होश ठिकाने आते हैं, यही माया है। जो फंसा है उसे पता ही नहीं चलता है वो फंस चुका है, वो मानता ही नहीं पहली बात, इसलिए डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता, इसलिए ट्रीटमेंट को ढूंढते। क्या करना चाहिए अमृत वेले का, पुरुषार्थ क्या करे, बाप समान कैसे बने, फरिश्ता कैसे बने, ब्रह्मचर्य का क्या करे, फोकस सारा ट्रीटमेंट पर है, डायग्नोसिस को डिनाय करते हैं। है वासना, कहते हैं हमारा प्रेम है। है मोह, पर कहते हैं हम तोड़ निभा रहे हैं। है इनसिक्योरिटी, पर कहते हैं हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। अकेलेपन का भय है, इसीलिए किसी को साथी बनाया है। फोकस ऑन द डायग्नोसिस, स्वयं के विकारों का डायग्नोसिस करना है कि जिसे हम प्रेम कह रहे हैं और जिसे हम सुख कह रहे हैं और जिसे हम बहुत अच्छा अच्छा कह रहे हैं, वो अच्छा कभी था ही नहीं, वो भ्रम था, वो माया थी। जिस संबंध को हमने पकड़ के रखा है, हो सकता है वो व्यक्ति ही हमारे ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जिस मान्यता को हमने पकड़ रखा है, तो ज्ञानियों के शिविर में भक्त बनने बैठे हैं। इस भक्त की 21 विशेषताएं हैं जिनसे हमें मुक्त होना है। तो आज हम ऐसी 21 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो हमें नारद कॉन्शियस बनाती है, सभी स्थिर अलर्ट, आंखें खुली स्थिर। पहला, मांगना। क्या करते रहते हैं बाबा से, मांगते रहते हैं। शांति दो, ये भूल जाते हैं कि मेरा तो स्वभाव ही शांति है, मेरा तो स्वरूप ही शांति है। कुछ भी मांगना, ये लक्षण है भक्त के, नारद के। हम मांगने वाले नहीं है, हम प्रसिद्ध किस लिए है, देने के लिए प्रसिद्ध है। हमें कुछ भी मांगना नहीं है, पर मांगते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। पहले भक्ति मार्ग में देवताओं से मांगते थे, उन्हें भगवान समझकर, और जब भगवान मिल गया है तो वो मांगने की आदत, वो कंडीशनिंग, वो सबकॉन्शियस रिवायरिंग चालू है सूक्ष्म में। योग अर्थात ज्वालामुखी योग हो, वास्तव में ज्वालामुखी योग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए परम धाम, ऑप्शन बी सूक्ष्म वतन, ऑप्शन सी स्थूल वतन। स्थूल वतन, परम धाम, और भी कोई, और भी कोई उत्तर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए उत्तर है, ऑप्शन सी बी। कैसे? ज्ञान में वैसे सभी ऑप्शंस राइट होते हैं, परंतु सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में है, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में, नो अटैचमेंट, न स्थूल न सूक्ष्म, इस संसार की कोई भी अटैचमेंट किसी भी तरह की नहीं है, ना किसी सेंटर से अटैचमेंट है, ना किसी स्टूडेंट से अटैचमेंट, ना किसी जिज्ञासु से अटैचमेंट है, ना किसी संस्था से अटैचमेंट है, कहीं से भी कोई भी किधर भी अटैचमेंट नहीं है। और ऐसे संपूर्ण ब्रह्मा में, संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा में वो ज्योतिर्बिंदु परमपिता का अवतरण, और हमारा स्वयं फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में, और उन दो नैनों से अग्नि आ रही है और मेरे विकार विकर्म निगेटिविटी भस्म कर रही है, ऐसा आग का विजुअलाइजेशन इस वोल्केनिक योगा। हाँ, परम धाम का वो सीड योगा है, बीज रूप स्थिति, कंबाइंड स्थिति, ज्वालामुखी भवन वो नहीं है, यहां आग है, वहां स्वयं को देखना सूक्ष्म वतन में, किस रूप में, स्वयं के फरिश्ता स्वरूप में, और वहां से क्या आ रही है, त्रिकुटी से या आंखों से तेजस्वी किरणें, बाप दादा साक्षात स्वयं खड़ा है, ऐसी आग की अनुभूति सूक्ष्म वतन में, अर्थात ज्वालामुखी योग। ऐसे योग में मांगना है ही नहीं, ये दे दो वो दे दो कुछ भी मांगना नहीं है, ये मांगना अर्थात नारद कॉन्शियसनेस, ये चेतना नारद की है, मांगने की, भीख मांगने की, कुछ तो दो। तो ये पहला, इसको हटाते जाना है धीरे धीरे, वो सब कुछ दे रहा है, उसने सब कुछ दे दिया है, कुछ मांगने का काम ही नहीं है, हम भूले हुए हैं। कुछ लोग जैन मास्टर के द्वार पर आते हैं, दरवाजा ठकठकाते हैं, दरवाजा खुलता है, मास्टर कहता है अभी नहीं, अभी समय है, दरवाजा बंद। वो लोग क्या करे, दरवाजा तो बंद हो गया, वहां कुछ गेंद होती है, बॉल्स, उन बॉल के साथ खेलने लगते हैं, और खेलते खेलते यही भूल जाते हैं हम आए किस लिए थे, और जब खेल के थक जाते हैं तो चले जाते हैं, जबकि एक एक बॉल पर लिखा होता है जब तुम्हारा खेलना पूरा हो जाए भीतर आ जाना, यू आर वेलकम। पर वो देखा ही नहीं और खेलते रह गए और भूल ही गए आए किस लिए थे, और फिर कुछ और ही करते रहते हैं। उसने दे दिया है, ही हैज गिवन एवरीथिंग, द एग्जिस्टेंस इज रिच, वाई बैक, वी आर द सन्स ऑफ किंग्स नॉट बैगर्स। अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत की संतान हो, आये धामिनि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदं पुरुषं महंतं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। शृण्वन्ति विश्वे, हे विश्व की आत्माओं सुनो, उपनिषद का ऋषि चट्टान पर खड़ा होकर चिल्लाता है, ओ चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टैलिटी, अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत की संतान हो, मांगते क्यों हो, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान तेजस्वी हो, देवताओं से भी श्रेष्ठ हो, तुम क्यों मांग रहे हो? ये मांगना क्या है? भक्ति। दूसरा, बाबा को याद तो करते हैं, परंतु कब ज्यादा याद करते हैं? संकट के समय, जब संकट आता है, जो परिस्थिति आती है, जब दुख आता है, तब याद तीव्र हो जाती है, बाकी उसको सहज रखते हैं। ये संकट के समय ज्यादा याद करना और परिस्थितियों में ज्यादा याद करना भी किसके लक्षण है? भक्ति के। भक्त भी तो ऐसा ही करता है, बाकी तो भूला रहता है, और जब जीवन में परिस्थिति आती है तो भगवान से क्या कहता है? तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा तो मेरा कुछ है ही नहीं। कहीं हमारी चेतना भी तो ऐसी नहीं कि हम बाबा को स्पिरिचुअल एम्बुलेंस बना के रखे एंड नॉट स्पिरिचुअल कंपेनियन. इसे कहते हैं इमरजेंसी स्पिरिचुअलिटी, आपातकालीन आध्यात्मिकता, जिसमें भगवान को कब याद किया जाता है, जब आपातकाल, जब परिस्थिति आती है. तो याद कैसी हो? निरंतर स्वतः सहज, हमेशा. किस लिए याद करना है? इसलिए नहीं कि स्वर्ग में जाए, इसलिए नहीं कि कुछ मिले, इसलिए नहीं कि विकर्म विनाश हो. याद कैसी हो? या लव फॉर लव सेक. तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो तुम स्वयं चाहिए. मैं तुमसे तुमको मांगता हूं. बाबा से क्या कहना है? मैं तुमसे तुमको मांगता हूं. अगर कुछ देना है तो तुम्हारे संसार की वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए. बाइबल में लिखा है सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस. पहले ईश्वर को प्राप्त करो एंड ऑल दीज थिंग्स, संसार की ये सारी चीजें, पद पोजिशन, ऑल दिस थिंग्स शैड बी एडेड अन टू इट. सब एड हो जाएगा. उस सृष्टिकर्ता को ढूंढ लो, पा लो, उसे अपना बना लो, तो ये सब तो स्वतः मिल जाएगा. पर हम उसे छोड़कर संसार की चीजों के पीछे जाए, दुविधा में दो गए, न माया मिली न राम, न ये मिलेगा न वो मिलेगा. इसलिए ये नहीं समझो कि अभी परिस्थिति आएगी तब ज्यादा याद करेंगे, परिस्थिति आएगी तब 2 बजे से योग. अखंड योग, ज्वालामुखी योग, रात्रि भट्टी का आयोजन अभी से ही आदत डालनी है, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा के बिना अधूरी है. आत्मा की प्यास इस संसार की किसी भी चीज से बुझ नहीं सकती, किसी भी चीज से नहीं. उसे कुछ भी दे दो. मास्लोज हायरार्की आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में. मास्लो नाम का व्यक्ति था जिसने नीड्स की हायरार्की बताई है, आवश्यकता क्या क्या है मनुष्य की. सबसे लोएस्ट लेवल में ट्रायंगल में उसने डाला है रोटी कपड़ा मकान, पहले वो चाहिए. पर उतना मिलने के बाद में भी तृप्ति थोड़ी ना, उसके बाद में और आगे और आगे और सेक्शंस है. लास्ट सेक्शन जो है ऊपर का, बीच में बहुत सारी बातें आती है. व्यक्ति को पैसा चाहिए, इनकम चाहिए, उसके बाद में भी और चीज चाहिए, सम्मान चाहिए, एक अच्छे संबंध चाहिए, प्यार चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए समाज में, और भी आगे और भी आगे. लास्ट में एक नया शब्द डाला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इसका इमेज आप बाद में देख लेना, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, नागरिक, नागरिक होने के अधिकार चाहिए, कहीं पर भी बेखौफ घूम सके, कोई डर ना हो, यह भी उसकी नीड है. एक 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 नीड बढ़ती जाती है और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अर्थात आत्म साक्षात्कार. उससे भी ज्यादा प्रभु प्रेम चाहिए उसे, ये अल्टीमेट है. संसार के लोग तो कई लोग लोएस्ट लेवल पर ही जीवन बिता देते हैं, और ऊपर और ऊपर. ये मिलने के बाद में भी संसार में सब कुछ है, सारे संबंध अच्छे, सारे लोग अच्छे, फिर भी बेचैनी है. क्यों बेचैनी है? क्योंकि आत्मा प्रभु से दूर है. इसलिए याद कैसी हो? सतत, निरंतर, अविरल धारा, अहर्निश. तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता है, समझौता करना, लेन देन. बाबा मैंने इतनी सेवा की, अब तुम्हें मेरे लिए यह करना पड़ेगा. मैंने तुमको इतना याद किया, अब तुमको यह करना पड़ेगा. तुम्हारे लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? इतना सा, मेरा घुटना ही तो दर्द है, उसको ठीक कर दो बस. फिर देखो मैं नीचे बैठ के कैसे योग करता हूं. इतना तो कर दो, हमने इतना कुछ करा, मेरी बेटी को ब्रह्मा कुमारी बना दो बस. मैं देखना चाहती हूँ संदली पर बैठे और मुरली पड़े, और बेटी स्वप्न देख रही है, मेरे स्वप्न का सौदागर कब आएगा मुझे ले जाने. और माँ सोचती है ये ब्रह्मा कुमारी बने. दोनों की विचारधारा ऐसी चल रही है. कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता, हमने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम ये करो, ये इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं नारद कॉन्शियसनेस। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम योग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। आए नारद, नारायण बनने पर बन रहे नारद ही नारद, भक्ति ही भक्ति चालू है। भक्ति खराब नहीं है, भक्त में भी श्रेष्ठ भक्त हुए, महान भक्त हुए हैं। बाबा ने तो यहां तक क्या, ये भक्त ये सन्यासी नहीं होते तो भारत जल मरता, उनमें भी श्रेष्ठ धारणाएं होती है। परंतु यहां हम भक्त अर्थात तो उन भक्तों की बात नहीं कर रहे, भक्त एक अवस्था का नाम है, किसी व्यक्ति का नहीं, जिसमें हम बाबा से मांगते रहते हैं, समझौता करते हैं, लेन देन करते हैं, मैंने ये किया अब तुम ये करो। अगला, मिरेकल्स की इच्छा करना, बाबा तुम क्या कर दो, चमत्कार कर दो, क्या कर दो, चमत्कार कर दो, चमत्कार हो जाए। किसी का सुना उसकी कोई बीमारी थी, उस बाबा को याद किया और ठीक हो गई, मेरी क्यों नहीं ठीक होती, तुम मुझे भी और मेरे साथ भी कोई चमत्कार कर दो। यह चमत्कार की कामना भी भक्ति है। जीवन में हजारों परिस्थितियां आएगी और हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही फेंका हुआ वापस आ रहा है। कर्म लौट कर आते हैं, हम भूल जाते हैं, चाहे कितना भी कुछ किया है, छिपा के किया है, वो कर्म लौट कर आएगा, छूट नहीं सकेंगे, सब दिखेगा। मृत्यु के समय एक क्षण में सारा चित्र दिखाई देता है। उदाहरण दशरथ का दिखाया है भक्ति मार्ग में, भूल ही गया था सब कुछ कि मैंने भी कभी किसी श्रवण को मारा था, पर लास्ट में सब याद आ गया एक सेकंड में। वो शाप याद आ गया माँ बाप का, तुम भी अपने पुत्र वियोग में शरीर छोड़ोगे। हमने किस जन्म में क्या किया है हमें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अभी जब नई परिस्थिति आती है तो उन्हें स्वीकार करना है, नए हिसाब क्रिएट नहीं करना है, दूसरों की निंदा करके, दूसरों को दोष देकर। हिसाब किताब को चुक तुक करने की विधि है याद, ना कि उनसे लड़ाई करना, लोगों से प्रश्न पूछना, तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं, उनके साथ कुछ करना ही नहीं है, उनके साथ कुछ भी नहीं करना है, करना है स्वयं के साथ इधर। और ये भट्टी उसी के लिए है, और ये नहीं समझो कि ये अंतिम भट्टी है, रियल भट्टी तो यहां से जाके आपको चालू करनी है। ये एक ट्रेलर है, ये एक प्रैक्टिस है, रिहर्सल हो रही है, रियल भट्टी तो वहां है, यहां जो अशरीरीपन और शांति का अनुभव हो रहा है वो तो स्थान का है। इसलिए चमत्कार की इच्छा नहीं रखनी है। अगला, कर्मकांड, ज्ञान कर्मकांड न बन जाए। अमृत वेला हो गया, मुरली हो गया, फिर नाश्ता हो गया, फिर सेवा हो गई, फिर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, नुमा शाम का योग हो गया, ज्ञान की चर्चा हो गया, सब हो गया, बस बाबा का मिलन नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। एम्प्टी रिचुअल्स, केवल कर्मकांड, वो कर्मकांड हो गया, एक रिचुअल हो गया, एक ट्रेडिशन हो गया, एक परंपरा बन गई है, बस उसको किए जा रहे, अंदर से चेतना डेड हो चुकी है। एक कोलू का बैल जैसे घूमता है, सेम दिनचर्या है, सेम दिनचर्या को बस फॉलो किए जा रहे, सुबह से लेकर रात तक बस करते जाओ। क्यों करना है ये भी भूल गए, किस लिए करना है वो भी याद नहीं है, जस्ट डूइंग इट। इसको कहते हैं अंग्रेजी में ड्रैगिंग, घसीट रहे ब्राह्मण जीवन, खुशियों का है, आनंद का है, वेयर इज द स्पार्क, वेयर इज द एनिमेशन, वो चिंगारी किधर है, वो जुनून, वो खुशी, उसको फिर से लौटाना है अपने जीवन में। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, उड़ो और उड़ाओ, स्व सेवा और स्व और सेवा का बैलेंस। तो जो भी हम करें वो कैसे करें, सचेत होकर करें। तो उसकी विधि क्या है, अभी यहां बैठे हो, होश में बैठना है। कलयुग को कलयुग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कल में रहता है वो कलयुगी है, या तो जो बीत गया है या जो आने वाला है। संगम युगी अर्थात नाउ हियर दिस मोमेंट, अभी यहां बैठे हैं तो बस यहां ही बैठना है। इस क्लास के बाद क्या करना है, किधर जाना है, किससे मिलना है, सब अलग। यहां से जब चलते हो तो ऐसे चलो कि जैसे अलर्टनेस से खा रहे हो, इतना प्रेम से खाओ उसको, उतना प्यार से खाओ उसको कि और कोई विचार ना हो, ना मोबाइल हाथ में हो, ना कुछ रील्स, ना शॉर्ट्स, ना यूट्यूब। जस्ट ईट, जस्ट वॉक, जस्ट सी, जस्ट वॉच, जस्ट सिट, जस्ट स्लीप। चॉप वुड एंड कैरी वाटर, अंग्रेजी में कहावत है। जैन गुरु से पीछा जब पूछा जाता है, तुम क्या करते थे जब तुम साधारण थे, जब तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था, वो कहता है मैं जंगल में जाता था, लकड़ियां तोड़ता था, पानी लेके आता हूं। अब क्या करते हो जब तुम्हें संबोधि प्राप्त होगी, जब तुम्हें एनलाइटमेंट हो गया, वो कहता अभी भी जंगल में जाता हूं, लकड़ियां तोड़ता हूं, पानी लाता हूं। काम वही है, परंतु सजगता है। अब यह सजगता ही राजयोग है, हर चीज होश में, बेहोशी में नहीं, होश में। अगर 24 घंटे हम होश में रहे तो कोई पाप हो ही नहीं सकता, कोई विकर्म होगा ही नहीं। विकर्म पाप की परिभाषा है विस्मृति, पुण्य की परिभाषा है स्मृति। निरंतर जागरण, तो चौथा है केवल कर्मकांड। पांचवा, अगला फिक्सेशन टू मधुबन, केवल जब मधुबन में है तब योग अच्छा लगता है। मधुबन सर्वश्रेष्ठ स्थान है, परंतु हमें प्रैक्टिस करनी है मधुबन विदाउट मधुबन की, जहां हम जाए एक सूक्ष्म मधुबन भीतर हो। केवल जब यहां आते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी है, चार धाम में है तो स्थिति बहुत अच्छी है, डायमंड हॉल में है बाबा के सामने तो स्थिति बहुत अच्छी है, पर वहां जाने के बाद वहां तो ये सब नहीं मिलेगा। वहां ट्रैफिक है, वहां भीड़ है, वहां घर है, वहां परिस्थितियां है, वहां आवाज है, वहां कोलाहल है। क्या उस कोलाहल में भी वैसी ही श्रेष्ठ स्थिति है? सो प्रैक्टिस मधुबन विदाउट मधुबन। मधुबन स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ज्योग्राफी, आध्यात्मिकता भूगोल नहीं है। जो किसी स्थान पर जाए तो ही स्थिति महान हो, आध्यात्मिकता। मधुबन कोई भौगोलिक स्थान का नाम नहीं है, हर वो स्थान, हर वो मन जहां परमात्मा याद है और मुरली की गूंज है, मधुबन है। केवल ये सोचना यहां मैं आता हूं तो सब ठीक रहता है, इसे कहते हैं भक्ति मार्ग। यह भी भक्ति ही है, यहां जब तक है तब तक ठीक, यहां से नीचे उतरे ट्रेन में बैठते ही माया चालू हो जाती है। एक ऐसी साधना है, यहां से जाते समय सूक्ष्म मधुबन को अपनी चेतना में समा कर लेके जाना है। यहां पैर, कान, नाक, यही चार धाम हो जाए, मैं ही मधुबन, ये हो जाए। एक बहन ने अपना अनुभव लिखा है, उनको बीमारी थी कैंसर जो फैल गया था, उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया ये जो लीवर है ना, ये कुटिया है, ये जो किडनी है ना, ये बाबा का कमरा है, ये जो हार्ट है, ये शांति स्तंभ है, ये फेफड़े है, हिस्ट्री हॉल है, मैं यहां बैठ बैठ के योग कर रही हूं और सकाश फैला रही हूं। एक कैंसर पेशेंट ने अपना अनुभव सुनाया था, पुरानी आत्मा। तो नए नवीनता हो, नया विजुअलाइजेशन। अगला, ज्ञान बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग वाला ज्ञान। केवल ज्ञान है पर समझ नहीं है, केवल ज्ञान को पकड़ रखा है, उसकी क्या गहराई है, उसके भावार्थ क्या है, उसका गुणार्थ क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, वो नहीं है। केवल पता है, सुना है, शब्द हमने पकड़े हैं, बाप आए हैं, तुम्हें स्वर्ग चलना है, तुम्हें विकारों को छोड़ना है, दिव्य गुण धारण करने हैं, विनाश सामने खड़ा है, काम आदि मध्य अंत दुख देता है, इतना सुना, इतना सुना, इतना सुना है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग खो गई है। ज्ञान अर्थात समझ, वो ज्ञान जो हमें परिवर्तन नहीं कर रहा है, वो केवल सूचना है। ज्ञान अर्थात बाबा को फूल चढ़ाना नहीं है या फूल मांगना नहीं है, ज्ञान अर्थात स्वयं के भीतर के बीज को जानना है। तुम स्वयं ही बीज हो। इसके अतिरिक्त तो जो हो रहा है वो भक्ति है। फिर भक्तों में और हम में क्या, वो शास्त्र पढ़ते हैं, हम मुरली पढ़ते हैं, वो भी पाठ करते हैं, हम भी पाठ करते हैं, वो भी तोता रटन करते हैं, हम भी तोता रटन करते हैं। वेयर इज द डेप्थ? इसलिए आदत डालनी है चिंतन की। रोज की जो मुरली क्लास में बैठते हो, मुरली नहीं लिखो, खाली टॉपिक्स लिखो, टॉपिक 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 टॉपिक, और सारे दिन भर वो जेब में रखो, बस में हो, गाड़ी में हो, स्टेशन पर हो, फ्लाइट में हो, टॉपिक निकालो और सोचो क्या है, क्या है। सुबह की मुरली, समय संकल्प, सोचो टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, संकल्प मैनेजमेंट कैसे करे। सुबह की मुरली स्वराज्य अधिकारी, सोचो कैसे करे। सुबह की मुरली आंखों में क्या, नैनों में क्या, हाथों में क्या, पैरों में क्या, दिल में क्या, सोचो विचार। अगर विचार नहीं है, चिंतन नहीं है, तो ये ज्ञान धीरे धीरे बोर्डम बन जाएगा। वही 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 वही, सेम सेम दिन वही बैठो, वही सारे शब्द भी वही, शब्दों को भी बदल दो। न्यूनेस, न्यूनेस लानी है। अगला, इंस्ट्रूमेंट अप्रूवल। हमारा सारा प्रयास केवल जो निमित्त आत्माएं हैं उनको खुश करने में ना जाए, चाटुकारिता में। हमारी सेवा का लक्ष्य है आत्मशुद्धि, ना कि दूसरों को प्रसन्न करना। अगर हमारा सारा समय उसमें जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य से ही भटक गए। फिर हम में और जो नेताओं के चाटुकार होते हैं उनमें क्या अंतर? हमारी अपनी अस्मिता, हमारे अपना सम्मान। हाँ, सबका सम्मान करना है, वो एक अलग है, परंतु उनसे प्रशंसा की चाह रखना। सेवा ही इसलिए करे कि प्रशंसा मिले, ये भक्ति के संस्कार है। दिस इज नारद कॉन्शियसनेस। अगला, जस्टिफिकेशन ऑफ कर्मा, अर्थात जो हम कर्म करें वो कर्म इसलिए नहीं कि प्रशंसा मिले, या फिर उसका हम जस्टिफाई करते रहे कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये है, ये इसलिए किया क्योंकि ये है। हमारा अपना आप पर इतना कॉन्फिडेंस कम है कि हमें हर कर्म को जस्टिफाई 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 करना पड़ता है, अपने आप को निर्दोष ही साबित करते रह रहे हैं। ये भी भक्ति का ही संस्कार है। क्यों इतना कॉन्फिडेंस हमारा कम है, या हमारे अंदर ही कुछ तो खोट है, कुछ हमें छिपाना पड़ रहा है, इसके लिए हमें जहां तहां जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, स्पष्टीकरण देना पड़ता है। यह स्पष्टीकरण देने की टेंडेंसी भी भक्ति मार्ग ही है। अगला है लेंथ ऑफ ज्ञान, कौन कितने समय से ज्ञान में है, इसका इतना महत्व नहीं है। उस ज्ञान को हमने अपने अंदर कितना समाया है, कितने समय से योग में है, ये पूछना चाहिए। हम जो पूछते हैं ना, कितने समय से ज्ञान में, पूछना क्या चाहिए, कितने समय से योग में है, या ज्ञान कितने समय से हम में है। स्पिरिचुअलिटी कैलेंडर नहीं है। पुरुषार्थ का संबंध कैलेंडर से नहीं है, पुरुषार्थ का संबंध इंटेंसिटी से है, तीव्रता से। समय कम है, जैसे आए हैं केवल 2-3 दिन के लिए यहां, तो यहां बहुत कुछ किया जा सकता है। एक है घूमना फिरना, एक है बातें करना, एक है खाना पीना, पिकनिक करना, एंटरटेन हो जाना, एक ये भी है। एक वो भी है कि इसी थोड़े से समय में ऐसी एक स्पिरिचुअल इमरजेंसी अपने अंदर क्रिएट करना कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे इतने कम समय में सब कुछ करना है, उसके लिए मुझे बोलचाल से बंद हो दूर जाना है, अपने भीतर प्रवेश करना है यहाँ, तो कैसा मौन और कैसा एकांत अंदर हो। क्रिएट अ स्पिरिचुअल अर्जेंसी कि टाइम बहुत कम है। हमने कहा है संगम युग पूरा हो रहा है, पता नहीं कब होगा, अचानक होगा। द डे ऑफ द जजमेंट शैल कम लाइक अ थीफ एट नाइट, बाइबल में लिखा है अंतिम समय चोर की नाई आएगा चुपके से, पता भी नहीं चलेगा कब। अगला मटेरियल रिचेस, भगवान से संसार की चीजें मांगते रहते हैं, लौकिक चीजें मांगते रहते हैं, ये भक्ति है। ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वो एक अलग वस्तुएं मांगना, ये दे दो, पैसे दे दो, घर दे दो, अगला फियर के साथ बाबा को याद करना, अगर याद नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। प्रेम जो है वो भय रहित होता है। जबरदस्ती याद कर रहे या कोई भय से याद कर, मुरली क्लास जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि लोग कहेंगे तुमको माया ने खा लिया, किसी की एक माता थी जिसके युगल की डेथ हो गई, तो वो रोई नहीं बिल्कुल, क्योंकि उसको ब्राह्मण परिवार के सामने दिखाना था कि मैं अचल उड़ोल हूं, और सबने उसकी बहुत महिमा की, कमाल है युगल ने शरीर छोड़ दिया परंतु स्थिति इतनी पावरफुल, और भीतर इतना दुख था जिस व्यक्ति के साथ 40 साल रही है, और धीरे धीरे वो दुख सप्रेशन में बदल गया, और वो सप्रेशन धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल गया, और बाद में मेडिसिन चालू करनी पड़ी। तो अध्यात्म दमन नहीं है, कोई भय की वजह से कर रहा है कि ये लोग क्या कहेंगे, इसलिए ये करना है। दिखना चाहिए सबको हम अमृत वेला थे, इसलिए अमृत वेला कर रहे, वो ज्यादा नहीं चलेगा। दूसरों को दिखाना है कि हमने इतना दान किया है, वो भी ज्यादा नहीं चलेगा। जहां दिखावा है और पाखंड है वहां अध्यात्म समाप्त हो जाता है। अगला ओबीडियंस है परंतु बिना रियलाइजेशन के, आज्ञाकारी कर रहे, हाँ जी कर रहे, पर क्यों हाँ जी उसका चिंतन नहीं है, वो भी भक्ति मार्ग है। अगला व्यक्ति पूजा, पर्सनैलिटी वर्शिप, बाबा ने यहां तक कहा है मेरे अतिरिक्त और किसी को याद नहीं करना है, यहां तक कि मुरलियों में आता है इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करो। हो सकता है ये ब्रह्मा खुद ही बोल रहा है अपने लिए, ये उनकी निरंकारिता है, परंतु किसी व्यक्ति के पीछे लग जाना, ये बहुत अच्छा है, इसका क्लास अच्छा है, उसका चिंतन अच्छा है, सम्मान सबको देना है, अच्छा जो भी है सबसे ले लेना है, पर किसी को अपना गुरु ही नहीं बना के रख देना है। इसको कहते हैं हीरो वर्शिप, इसको कहते हैं व्यक्तित्व पूजा, पर्सनैलिटी वर्शिप, ये भक्ति मार्ग है। भक्ति में यही तो है,
जो भी गुरु हुए, जो भी साधु संन्यासी योगी तपस्वी महात्मा है, संत हुए, वो चले गए। उनके बाद उनके भक्तों ने उनको मंदिर बना दिए, चमत्कार जोड़ दिए उनके साथ। अगर ये हमारे साथ भी हो रहा है और हम भी कर रहे हैं, यही बहुत अच्छा है, तो ये भी भक्ति ही है। अगला, ज्ञान बोलते रहते, कोट करते रहते, पर भीतर कोई अनुभव नहीं है। सारे शब्द बोलते रहते, अशरीरी अशरीरी अशरीरी, अरे खुद कितना हमने अशरीरीपन का अनुभव किया है। ज्वालामुखी ज्वालामुखी, कर्मातीत कर्मातीत, कर्मयोगी कर्मयोगी, सारे शब्द है, कोटेशंस है, बट जीरो एक्सपीरियंस। अमृत वेले पर धारणा की लंबी लंबी और बड़ी बड़ी दो 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 तीन तीन घंटे की कोई क्लास करा सकता है, पर भीतर शून्य अनुभव, क्योंकि भाषण तो एक कला है, प्रैक्टिस करो तो आ जाएगी, पर अध्यात्म भाषण नहीं है। भाषण वालों की तो कमी है क्या संसार में? टाइप करो उसमें पॉडकास्टर्स यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स ढेर है, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एक्टर्स ले लो, सेलिब्रिटीज ले लो, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ले लो, उनमें बहुत कलाएं होती है, परंतु बाबा के महावाक्य है, वो लोग हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, अशरीर नहीं बना सकते। यहां तो साधना है, यहां तो तप है, यहां तो त्याग है, यहां तो स्वयं को जीतने की साधना है। अगला, रिलायंस ऑन एक्सटर्नल एटमॉस्फियर, बाहर के वातावरण पर निर्भर। एक बताया हमने मधुवर पर निर्भर, दूसरा बताया बाहर के वातावरण पर निर्भर। हम कहीं पर भी खड़े हो, चाहे भीड़ में है, कहीं पर भी, हमारे भीतर वो मौन वो एकांत हो। हजारों की भीड़ में है या अकेले हो, भीतर वही सन्नाटा, वही प्रभु प्रेम। अगर वो नहीं है तो वो भक्ति मार्ग। कि हाँ, हम सेंटर पर जाते तो स्थिति अच्छी रहती है, जैसे वहां से निकलते हैं तो लोकल ट्रेन में घुसते ही, मेट्रो में जाते ही स्थिति खराब, ऑफिस में जाते ही वहां के वाइब्रेशंस प्रभावित करते हैं, भीड़ में गुजरते हुए लोगों के बीच रहते हुए उनके वाइब्रेशंस आते हैं। और जैसे कहा, माया की टीम होती है, एक व्यर्थ विचार नहीं आता है, असंख्य व्यर्थ विचार आते हैं, ऊर्जा को चुरा लेते हैं। आलस ऊर्जा की चोरी है, इट इज द थेफ्ट ऑफ एनर्जी। अगला, हम ढूंढते हैं अप्रूवल दूसरों से, वैलिडेशन चाहिए दूसरों से, कि दूसरा कुछ कहे। सोचो हमने कोई सेवा की और बाद में हमें उसकी प्रशंसा नहीं मिली तो हमारी स्थिति कैसी? हमने सेवा की और प्रशंसा मिली, उसकी स्थिति कैसी? खुद ही दो को क्या करना है? कंपेयर करना है। बहुत अच्छी सेवा की है जिसके लिए हम निमित्त थे, परंतु उसका कोई भी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा उसके लिए। हमारी वास्तविक जो भूख है वो डिजिटल भूख भी है, लाइक्स की, सब्सक्रिप्शंस की। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बेल आइकॉन दबाओ, ये सब क्या है? डिजिटल बेगरी। लाइक करो, हमने ये किया है, सब्सक्राइब करो, ये हमारा चैनल है, हमने ये कहा, हमने ये किया, दिस इज ऑल्सो भक्ति। अगला, बोलना पर करना नहीं, कि मैं करूंगा। यहां से जब जाएंगे ना तो सीधा अमृत वेला एक दिन भी मिस नहीं होगा। केवल प्रतिज्ञा करने से नहीं होगा, वो मिस क्यों हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करो। वो जो संबंध है किसी व्यक्ति के साथ, उसमें इतना डिस्टर्बेंस क्यों है? उसका कारण नहीं ढूंढा और हमने सोचा नहीं नहीं उसके साथ बहुत प्यार से रहेंगे, वो पता नहीं, वो नहीं होगा। प्रतिज्ञा ऐसी थोपी नहीं जाती है, अगर थोपेंगे तो वो बाहर निकलेगा वो संस्कार। जैसे एक गांव में कुत्तों का जो सरपंच होता है वो डिसाइड करता है कि मनुष्य के समाज में हम बहुत कुप्रसिद्ध है, बहुत बदनामी है, और बदनामी का कारण है हमारा भौंकना। हमें भौंकना बंद करना चाहिए। मीटिंग होती है गांव के बाहर, किसकी? कुत्तों की, कि हम एक दिन भौंकने का उपवास रखेंगे। सुबह से लेके तो अगले दिन 6 बजे तक कोई भी कुत्ता भौंकेगा नहीं। दिन भर बहुत मुश्किल से सब अपना भौंकना रोकते हैं। याद बहुत आती है, पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव, परंतु संकल्प, प्रतिज्ञा पर जैसे रात के 12 बजते हैं। अब जिसने प्रतिज्ञा कराई थी वो तो बूढ़ा था, पहले ही उसका भौंकना कम हो चुका था, पर बाकी तो जवान युवा थे। एक ने रात को 12 बजे भौंकना चालू किया और उसके बाद सब ने एक साथ भौंकना चालू किया, सारा गांव पागल हो गया। अचानक से तूफान आ गया भौंकने का, तो जबरदस्ती कुछ करेंगे, दमन करेंगे तो निकलेगा फिर बाहर आधी रात को। उपवास करते हैं दिन भर, रात में ब्रह्मा भोजन दिखता है फिर स्वप्न में, वेट कम करने के चक्कर में। अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगला, प्रेम है पर जिस प्रेम ने बदला नहीं है, अनट्रांसफॉर्म्ड लव। प्रेम जो केवल गीत गाता है वो भक्ति है, प्रेम जो परिवर्तित होता है वो राजयोग है। केवल महिमा ही करते रहो, तुम प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, पवित्रता के सागर हो। हमारा योग अपने ही योग को देखना है, साक्षी हो के हम करते क्या है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम इधर तिलक, इधर ये, फिर इसको सकाश, इसको सकाश, फिर द्वापर युग, ये वो, मैं फरिश्ता और हो गया, चलो काम पूरा हुआ, आज का काम पूरा हुआ, नुमा शाम का योग सब किया, ये किया, वो किया, काम पूरा हुआ, शिव की याद रहेगी तब काम पूरा हुआ। लास्ट, भक्ति की निशानी है, भक्ति का समर्पण और ज्ञान के समर्पण में अंतर है। भक्ति में स्वार्थ होता है, यहां जो समर्पण है निस्वार्थ समर्पण है। हम बाबा से, हमें प्रेम इसलिए है, समर्पण इसलिए है कि हमें केवल तुम चाहिए, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। क्रिएट दैट एटीट्यूड। हमारे जो भीतर बैकग्राउंड में जो गीत बजते हैं वो भक्ति के गीत ना बजे। यहां समर्पण अर्थात केवल कपड़े, बैच या स्थान या समारोह नहीं है, समर्पण स्थिति का नाम है जिसमें हम स्वयं को ही अर्पित कर रहे हैं। सब कुछ तुम्हारा। और कितने हो गए? 20 लास्ट। भक्ति में भी नाचते हैं और गाते हैं, हम भी नाचते हैं और गाते हैं, पर हमारा सब कुछ सूक्ष्म है। अगर वो केवल स्थूल रह रहा है, जैसे संसार के लोग त्योहार मनाते और हम भी अगर केवल वैसा ही मना रहे, तो वो राखी बांधना और वो दिए जलाना ये केवल भक्ति मार्ग है। कैंडल लाइटनिंग करना और भीतर का प्रकाश, भीतर का कैंडल बुझा हुआ है, ये सारा सूक्ष्म है। हमारा नाचना, हमारा गाना कैसे है? सूक्ष्म, स्थूल भी है, परंतु स्थूल के साथ क्या हो? सूक्ष्म डांस। वी आर द डांसिंग मसीहास। हम कौन है? नाचते गाते राजयोगी, तपस्वी। प्रत्येक मूवमेंट क्या हो? एक नृत्य। इवन डेथ हमारे लिए सेलिब्रेशन हो जाए। जैसे संसार के लोगों के लिए डेथ कैसी है? बहुत खतरनाक चीज है, डरते हैं वो मृत्यु शब्द से भी, परंतु हमारे लिए वो क्या है? एक उत्सव है। ऐसी चेतना अर्थात भक्ति से मुक्ति अर्थात राजयोग। इसलिए अपने ही मृत्यु को साक्षी होकर देखना है कि अगर मैं चला जाऊं तो क्या, यह नहीं समझना कि लोग दुखी हो जाएंगे, हो सकता है ज्यादा खुश हो जाए, हो सकता है उनको इंतजार है कोई कमरा मिल जाए, कोई पद मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, और हम सोचते थे इनका मेरे से कितना प्रेम है। डायग्नोसिस ही गलत है। एक बहुत अच्छी चीज है जो कल ही हमको अचानक स्ट्राइक हुई कि हम सम्मान लेते हैं, मैं नष्टोमोह आत्मा हूं, सम्मान ये लो कि ये नष्टोमोह आत्मा है। क्या सम्मान लेना है? ये जो जितने हैं आसपास इनका मेरे से मोह ही खत्म हो चुका है, अब मैं इनसे क्या एक्सपेक्ट करूं, इतना अच्छा होगा। हमारे दुख का कारण दूसरे ही तो है, द अदर इज हेल। दूसरों के शब्द और व्यवहार हमें सबसे ज्यादा दुखी करते हैं। तो ये ऐसी सारी बातें थी इसकी, भक्त कॉन्शियसनेस की, नारद कॉन्शियसनेस की। तो सूक्ष्म भक्ति हमारे अंदर अभी भी जीवित है, हमें बनना है नारायण। नारायण अर्थात नाचने वाला, गाने वाला, यहीं यहीं पर नारायण बन जाना है, यहीं वो सारे संस्कार इमर्ज हो जाए। जिसके संकल्पों में सतयुग नहीं उतरा है वो सतयुग में कैसे जाएगा? तो सभी खड़े हो जाएंगे और ये जीवन हमारा नाचने और गाने का जीवन है। डॉक्टर गायत्री बहन आएंगे और वो हम सबको सतयुग की सैर कराएंगे। आपको वही सब करना है जो बहन जी आपको कराए। सभी रेडी है? ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो या फिर टच द स्काई, टच द स्काई, टच द ग्राउंड, टच द अर्थ, टच द अर्थ, टच द वॉल्स। हो गया? तो गीत बजेगा और जो जो स्टेप्स थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे सभी, हमें अपने भीतर वो नारायण कॉन्शियसनेस, वो लक्ष्मी कॉन्शियसनेस लाना है कि हमें उस दुनिया में जाना है जो फिरदौस है, हमें उस दुनिया में जाना है जो सतयुग है, और वहां की चेतना को अपने भीतर इमर्ज करना है। तो जैसे जैसे स्टेप्स बहन जी करेंगे, एज इट इज आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो स्टार्ट करेंगे गीत।
चले चलो फिर दोस चले, चले चलो फिर दोस चले, फरिश्तों के करवा चले, जन्नत की राहों पर चले, हर मन्नत पूरी करता वो जन्नत, परिश्ता बदलता हमारी किस्मत, हथेली पर वो बहिष्ट लाया, सतयुग फिर आया कि आया, खुदा का बगीचा मन भावन, अल्लाह का चमन अति पावन, नवी युग का सवेरा होगा, स्वर्ग में बसेरा होगा, वैकुंठ की महक सुहानी, राजधानी की सुगंध रूहानी, शिव का प्यारा शिवालय, सबसे न्यारा देवालय, चले चलो फिर दोस चले, चले चलो फिर दोस चले, फरिश्तों के करवा चले, जन्नत की राहों पर चले, विष्णुपुरी का रंग बिखरेगा, कृष्णपुरी की रास सजेगी, सुनहरी दुनिया फिर बसेगी, क्षीर सागर वो अति प्यारा, मीठा धाम है वो हमारा, पावन धाम है सुहाना, जीवन मुक्ति धाम ठिकाना, ब्रह्मा का दिन है उजाला, अद्वैत राज्य है निराला, कंचन दुनिया हमें भाता, भाती है।
चले चलो फिर दौस चले, चले चलो फिर दौस चले, फरिश्तों के कारवां चले, जन्नत की राहों पर चले।
साथी तुम्हें सुख धाम में सुख के स्वर्णिम वर्षा, श्रेष्ठाचारी दुनिया का अलौकिक वर्षा, सचखंड का छाया प्रकाश, अमर लोक का खुला आकाश, इंद्रप्रस्थ में ना करे माया त्रस्त, देवों के युग में रहे सब स्वस्थ, अमर पुरी वो अनमोल, पारस पूरी है बेमोल, पवित्र दुनिया पुकारे हमें, सतो प्रधान दुनिया बुलाए हमें।
चले चलो फिर दौस चले, चले चलो फिर दौस चले, फरिश्तों के कारवां चले, जन्नत की राहों पर चले।
मनोहर वॉइसलेस वर्ल्ड की शान है मनहर, हेवन चमकता पैराडाइज दमकता, लक्ष्मी नारायण की दुनिया है आनी, पुण्यात्माओं की दुनिया नुरानी, अमर लोक की गाथा न्यारी, देवताओं की दुनिया प्यारी, भारत फिर सो चिड़िया बनेगा, नव भारत में प्रेम का दीप जलेगा।
चले चलो फिर दौस चले, चले चलो फिर दौस चले, फरिश्तों के कारवां चले, जन्नत की राहों पर चले।
अभी स्टॉप, खड़े ही रहेंगे आंखें बंद, एक सेकंड में परम धाम, रेड लाइट, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आवाजों से परे, हलचल से परे, मेरे अंग अंग से पवित्रता वायुमंडल में संपूर्ण शांति, परमधाम में शिव बाबा को टच किया, वापस देह में प्रवेश, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मेरे अंग अंग से रोम रोम से चारों तरफ पवित्रता ही पवित्रता फैल रही है। मन में उमंग, मन में नृत्य, मैं नाचता गाता फरिश्ता हूं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, भक्ति की दुनिया समाप्त, मैं योगी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं राज ऋषि हूं। सभी बैठ जाएंगे। ओम शांति।